पृष्ठ एक, नया परिवेश, नया साहित्य। प्रत्येक युग की अपनी दृष्टि और सृष्टि होती है। बदलते संदर्भों में जिस दृष्टि का विकास होता है, उससे प्रेरित होकर ही साहित्य सृष्टि के नए आयाम प्रस्तुत होते हैं। कोई भी साहित्य युग निरपेक्ष नहीं रह पाता है। उसके मूल में इतिहास और जीवन, परिवेश और वातावरण तथा परंपरा व प्रगति की नई भंगिमाएं सदैव क्रियाशील रहती हैं। सृजन यदि अपने समकालीन परिवेश से आंखें चुरा लेता है, तो वह न तो जीवंत व यथार्थ बन पाता है और न उसका प्रभाव स्थायी होकर किन्हीं मूल्यों को उत्प्रेरित ही करता है। वर्तमान काल में विशेषकर स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाने के बाद से ही परिवेश बदलता गया है। नए मूल्य निर्मित हुए हैं, पुरानों की पुनर्परीक्षा हुई है और परंपराओं का नवीनीकरण हुआ है। निर्माण, परिवर्तन और नवीनीकरण की इस प्रक्रिया ने न केवल जनजीवन को अपितु साहित्य को भी प्रभावित किया है। प्रभाव की यह लहर इतनी तीव्र गति से दौड़ी कि उसने अपने पारंपरिक तट को लांघकर नई देहरी से नाता जोड़ लिया। यों आज का जीवन नाते रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देता है। फिर भी इतना तो सच है ही कि जीवन और साहित्य में जो नए रिश्ते कायम हुए हैं, जो नए मूल्य बने हैं और जिन नई प्रतिभाओं ने आकार पाया है, उसकी जड़ें हमारे परिवेश में गहरे तल तक चली गई हैं। नए परिवेश की प्रारंभिक सीमा रेखा सन 1947 से पूर्व नहीं है और तब से अब तक परिवेश में कई परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद जो परिवेश बना है, उसकी जो प्रतिमा बनी है, वह एक ओर तो स्वातंत्र्य के बोध से रंजित है, समानता के भास्वर रंगों से दीप्त है और दूसरी ओर द्वितीय महायुद्धोत्तर परिस्थितियों से भी अपना आकार गढ़ती रही है। आजादी के बाद भारतीय परिवेश में सामाजिक उत्थान व कल्याण की लहर दौड़ी है। आर्थिक विकास और राजनैतिक प्रगति की विविध योजनाएं बनी हैं और निम्न और उपेक्षित वर्ग को आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे समानता व भ्रातृत्व बोध तो विकसित हुआ ही है। युद्ध परिवेश ने जनमानस को पर्याप्त आंदोलित उद्वेलित किया है। जनजीवन समस्याओं के जाल में भटक गया है। अनेक वृहदाकार प्रश्न चिन्हों ने उसे लीलने का प्रयत्न किया है और पृष्ठ दो, बाहरी व भीतरी स्तर पर असामंजस्य का भाव पनपा है। इतना ही नहीं, मनुष्य बदला, उसके विचार बदले, उसकी जीवन दृष्टि में परिवर्तन हुआ, उसका आचरण विसंगतियों से भर गया, व्यवहार कृत्रिम होता गया और दुनिया की आपाधापी में मनुष्य को मिली मात्र निराशा, टूटन और भटकन। फलतः नए परिवेश में मनुष्य अनेक अंतर विरोधों का पुंज बनकर रह गया। उसकी आकृति पर स्याह धब्बे पड़ते गए, आंखों में धुंध छाती गई, कान और नासिका व कर्ण रंध्रों में गैसीली वायु भरती गई, जिसके प्रभाव से मनुष्य न केवल हताश हुआ अपितु उसके मस्तिष्क की चूलें हिल गईं, हड्डियों का फास्फोरस चुकता चला गया और वह अपनी ही टांगों पर खड़ा गट्ठर हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की चेतना सुन्न हो गई और उसकी धार भोथरी होती गई। उसके पास न तो कुछ ऐसा रहा जिसके बलबूते वह खड़ा रह सके और न कोई ऐसी आशा किरण ही बची जो उसे और कुछ नहीं तो कम से कम जीने की हिम्मत तो दिला ही सके। औद्योगीकरण, नगरीकरण और वैज्ञानिक अन्वेषणों के पार्श्व में खड़ा जीवन बाहर से ही नहीं, भीतर से भी बदला है। आजादी ने हमें जितना दिया है, उससे अधिक हमसे ले भी लिया है। हमें सिर्फ आजादी मिली जो तीन थके हुए रंगों का नाम है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि स्वतंत्रता और संस्कृति एक अल्पसंख्यक वर्ग विशेष को ही मिली है। सामान्य मनुष्य तो अभी भी आजादी की टोह रहा है। यूं आजादी के बाद देश कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार आदि विविध दिशाओं में प्रगति कर रहा है। अनेक योजनाओं परियोजनाओं के तहत देश ने प्रगति की कई सीढ़ियां चढ़ी है। अतः यह कहना तो सत्य से आंखें मूंद लेना होगा कि आजादी के बाद कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, व्यक्ति का मन अभी भी आजादी के रंगों को खोज रहा है। आजादी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी अहम उपलब्धियां लेकर आई है, वैयक्तिक स्तर पर उतना और वैसा कुछ नहीं हस्तगत हुआ है। व्यक्ति की मनोव्यथा बढ़ी है क्योंकि महानगरों में भीड़ बढ़ी है। मनुष्य पहले से अधिक अकेला हुआ है क्योंकि उसे अस्तित्व नहीं मिला है। उसकी ऊब दुगनी हुई है क्योंकि मानवीय संबंध बिखर गए हैं। मनुष्य बेरोजगार होता गया है क्योंकि गांव और नगर पीढ़ियां उगल रहे हैं। निराशा का रंग दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता गया है क्योंकि मनुष्य की स्थिति अनपहचान हो गई है। महानगरों में भीड़ का दबाव बढ़ा है तो उसी अनुपात में जीवन यांत्रिक और एक रस होता जा रहा है। नतीजा यह है कि छोटे नगरों में जीवन के अभाव और विषम परिस्थितियां इतनी अधिक तेजी से बढ़ रही पृष्ठ 3 हैं कि व्यक्ति के मन में एलियनेशन और बोर्डम की भावना ने डेरा डाल लिया है। उपयुक्त साधनों का अभाव, जीवन स्तर में उत्पन्न बाधाएं, अव्यवस्था व अनुपयोगी शिक्षा, बेकारी, जनसंख्या की बढ़ोतरी, वैज्ञानिक सुविधाओं का अधिक चरापन और बीमारी, गंदगी व भुखमरी के कारण देश का आम आदमी पीड़ित है। उसका रक्तचाप या तो ऊंचा है या काफी नीचा है, वह नॉर्मल नहीं रह गया है। युवक युवतियों की अपनी समस्याएं हैं, अप्राकृतिक यौन संबंध, उन्मुक्त प्रेम, नशीले पदार्थों का सेवन, तलाक, हड़ताल, भ्रूण हत्या और नंगे अनंगे शरीरों का नृत्य आदि जीवन को जिस हवा के साथ बहाया जा रहा है, वहां ठहर कर सोचने का अवकाश ही किसको है। नई पीढ़ी समाज की सड़ी गली परंपराओं को तोड़ रही है, लीक से हटकर अपने अनुसार लीक बना रही है। वह वाइफ स्वैपिंग के खेल खेलती है। फैशन का नया दौर सामने से गुजर रहा है। टॉपलेस और मिनी स्कर्ट का फैशन जोरों पर है। फैशन का बाजार गर्म है। एक तरह का डिजाइन आ नहीं पाता कि दूसरा आकर उसे पुराने खाते में धकेल देता है। हिप्पी व विटनीक संस्कृति ने देश के महानगरों का जीवन कम ही बदल दिया है। वर्तमान जीवन में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का जीवन भी अनाकर्षक, अव्यवस्थित और असंतोषपूर्ण होता जा रहा है। युवा बुद्धिजीवियों के सामने भविष्य का रूप स्पष्ट नहीं है और आज की नारकीय जिंदगी की धकापेल में कर्तव्य का ज्ञान ही हवा हो गया है। अतः पिछले 25 वर्षों में हमारा जीवन जितना बदला है, उसमें जो अव्यवस्था, दरार और बिखराव आया है, उतना पिछले सैकड़ों वर्षों में भी नहीं आ पाया था। मध्यवर्गीय व्यक्ति एक ओर तो पुराने संस्कारों के जकड़न से बाहर आना चाहता है और दूसरी ओर टेबूज व रूढ़ियों के जंजीरों को तोड़ डालने पर आमादा है, किंतु करे क्या, उसके हाथों की ताकत गायब है। वह आधुनिक विदेह हो गया है। उसकी संकल्पी मनोवृत्ति नीचे दब गई है, अतः विवश है, अभिशप्त जीवन जी रहा है। इस विवशता ने उसके मानस में कुंठा, एकाकीपन, अजन्वीपन, घुटन, निरुद्देश्यता, नपुंसक आक्रोश और अकेलेपन के बोध को गहरा दिया है। इस स्थिति से केवल पुरुष गुजर रहा हो सो बात नहीं है, स्त्रियां भी इसी स्थिति और परिवेश में जी रही हैं। उनका शरीर रीतिकालीन नायकों के द्वारा तो उन्मथित ही हुआ था, आज तो वह बार बार नापा जा रहा है। वासना के फीते के सामने वह छोटा पड़ गया है। अंग प्रत्यंग पर वासना के नीले निशान हैं और उसकी परिणीति भ्रूण हत्या, एबॉर्शन और भोग की दीवारों से सिर पटकने में ही रह गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक परिवेश का मानचित्र काफी भयावह, त्रासद और घिनौना है। उसमें समस्याओं के पहाड़ हैं, अतृप्तियों व विक्षुब्ध मनःस्थितियों की सरिताएं हैं, अकेली शैल मालाओं और पृष्ठ 4। समूचे मानचित्र में न कोई रंग है न रौनक। वह विकृति हाशिया हीन, सीमाहीन और लिजलिजा सा हो गया है। इतना ही नहीं, उसमें अंकित प्रत्येक नगर अजनबीपन का भार लिए अपनी जगह पर खड़ा भर है। यो उसके आसपास छोटे बड़े नगरों का भीड़ है, उसका दबाव है, परंतु फिर भी वह अकेला है। ऐसे परिवेश में लिखा गया आधुनिक साहित्य इससे अलग कैसे हो सकता था? नहीं ना। अतः ऊपरी संकेतिक परिवेश से प्रभावित साहित्य का रूप रंग भी तदनुकूल ही है। अपने चारों ओर फैले परिवेश के दबाव को प्रत्येक नए संवेदनशील रचनाकार ने सहा है, भोगा है, कभी चाहे कभी अनचाहे। वह विक्षुब्ध हो उठा है, उसका मन प्रतिक्रियात्मक होता गया है, होता जा रहा है। समकालीन रचनाकार मानव मूल्य, नैतिकता, अनैतिकता, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल प्रगति के बीच भूख, नवीन परिस्थिति में यौन संबंध आदि प्रश्नों के विविध पक्षों के समाधान ढूंढना चाहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में विकसित व्यक्तिगत स्वार्थ, अवसरवादिता, अनिश्चितता, अलसता, ग्लानी, असमंजस और रिक्तता बोध से घिरकर साहित्य की मनः शक्तियां कांप उठी हैं। उसकी चेतना भूमि में जो भी अंकुर पड़ता है वह विकृत है, खंडित है। उसकी संवेदना से सिक्त होकर जो चित्र उभर रहे हैं वे भी भयावह, दंशक बाधाओं को कपा देने वाले, भूख, भोग, अनैतिकता और टूटते बिखरते सायों के ही प्रतिबिंब हैं। कविता, कहानी, नाटक व उपन्यास सभी में इस परिवेश से प्रेरित जीवन को अभिव्यक्ति मिली है। काव्य को एक बार छोड़ भी दें और केवल कथा साहित्य पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करें तो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें आधुनिक जीवन अपनी तमाम विसंगतियों व विडंबनाओं के साथ अभिव्यक्त हुआ है। कहानी साहित्य यदि अनुभूत स्थितियों का प्रमाणिक दस्तावेज है तो उपन्यास साहित्य वर्तमान जीवन का आईना है, जिसमें समूचे जीवन को उसके पूरे रोए रेशों के साथ देखा जा सकता है। रहा नाट्य साहित्य, उसमें भी मानवीय रिश्तों की टूटन, कतरन और बेजुबान स्थितियों की नामहीन ट्रेजेडी आकार पा रही है। नाटकों में नए प्रतिमानों के साथ नई पद्धति पर मंची आवश्यकताओं का विधान हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक गद्य साहित्य परिवेश की दाहिनी आंख बनकर आया है। रचनाकारों ने उसमें जो देखा है, जितना भोगा सहा है, वही प्रामाणिक अनुभूति के आईने में छिपता दिपता दिखाई देता है। आधुनिक कथा साहित्य में निरूपित जीवन व्यक्ति के संबंधों, उसके त्रासद प्रसंगों और तत्संबंधित एवं तत्प्रेरित जीवन मूल्यों की ऐसी महागाथा है जिसका कोई एक नहीं अपितु समूचा मानव जीवन है।